आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, मेरा नाम है नियति और आज के हमारे इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का जो सेकेंड चैप्टर है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसको आज हम उसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। तो हमने हमारे पिछले क्लास में देखा था कि किस प्रकार से नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उनके मन में जो ब्लैक वाइट्स हैं उनके प्रति कोई भी हेट बिल्कुल भी नहीं है। तो आगे चलते हैं पेज नंबर 19, तो शुरू करते हैं। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेलम्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अ फ्यू इयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोयर वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ, द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. The structure they created formed the basis of this harsh sheds most inhuman societies of the world has ever known. So, यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि उनके जन्म से भी पहले एक एंग्लो बोयर नाम का एक वॉर साउथ अफ्रीका में हुआ था और ये वॉर हुआ था जो ब्रिटिशर्स थे उनके बीच में और साउथ अफ्रीकन के कुछ लोगों के बीच में। तो सून आफ्टर दिस वॉर ये सिचुएशन हुई थी कि जो वाइट स्किन जो लोग थे, गोरे जिनको हम कहते हैं आम भाषा में गोरे लोग, या फिर आप कह सकते हो जो जिनकी स्किन वाइट थी, ऐसे साउथ अफ्रीकन जो लोग थे उन्होंने ब्लैक्स के अगेंस्ट, जो ओरिजिनल ब्लैक लोग थे साउथ अफ्रीका के, उनके साथ मनमानी करनी शुरू की और वो लोग उनको अपने से उनको वो इन्फीरियर समझते थे और खुद को सुपीरियर। सो ये जो शुरुआत हुई थी वो नेल्सन मंडेला के जन्म से भी पूर्व की शुरुआत थी। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माय ओन 18th डेकेड एज अ मैन, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉरएवर एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डिंग ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मैं 80 साल का हूँ और 80 साल जो मैंने अपनी जिंदगी जी है वहां भी मैंने इस प्रकार की रेशियल सुपीरियरिटी देखी है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मैंने देखा है। सो दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, पीपल हुज सफरिंग्स एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड ऑन रिपेड। आई फेल्ट दैट डे as I have on so many other days, that I have simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was painted that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had brought. So yahan pe Nelson Mandela keh rahe hain ki mere se purv bhi bahut sare aise shaheed log hue hain जिन्होंने अपनी जाने सेक्रीफाइस की है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द साउथ अफ्रीकन जो इक्वालिटी है उसको प्रोटेक्ट करने में। सो वो अभी होने चाहिए थे या फिर वो लोग अभी चाहिए थे जिन्होंने इतने बड़े अपनी जानों की कुर्बानी दे दी टू ब्रिंग इक्वालिटी इन साउथ अफ्रीका और जो रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म करने के लिए। वो जब खत्म हुआ है तो वो लोग जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है वो लोग अभी चाहिए थे ताकि वो देख सके कि किस प्रकार से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन साउथ अफ्रीका में अभी खत्म हुआ है और सब लोग मिलजुल के रह रहे हैं। सो यहाँ पे एक डिफिकल्ट वर्ड है ब्रॉट, WROUGHT, जिसका मतलब है ओल्ड फैशन फॉर्मल वर्ड है ये, जिसमें आप ये एक ओल्ड फैशन वर्ड है जिसको कह सकते जिसका मतलब है डन या फिर अचीव। तो आजकल हम ये ब्रॉट वाला जो वर्ड यूज करते हैं तो उसका सिमिलर वर्ड है ब्रॉट। दूसरा चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे। द पॉलिसी ऑफ एपार्टहाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माय कंट्री एंड माय पीपल। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी इयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि बस मैं ही नहीं बट मेरे साथी जो हैं बाकी के लोग, जैसे कि बाकी के साउथ अफ्रीका के जो सिटीजन्स हैं, उनको बहुत ज्यादा वक्त लगेगा ये इनह्यूमन ट्रीटमेंट वाइट लोगों ने उनके साथ की है तो उसको भुलाने में उनको बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू फॉरगेट ऑल दोज बैड प्रैक्टिसेस जो वाइट लोगों ने उनके साथ की थी। सो ऑल ऑफ अस all of us will spend many years, if not generations, recovering from the profound hurt. Profound ka matlab hai deep ya fir strong. क्योंकि वो इतना ज्यादा हर्ट हुए थे साउथ अफ्रीका के लोग कि उनको वो वाला जो किस्सा है अपनी जिंदगी का, इतने सालों तक जो उन्होंने झेला है, उसको भूलने में उनको बहुत ज्यादा वक्त लगेगा. बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर थॉम्बस, द वॉल्टर सिसिलस, द चीफ लुथलिस, द यूसुफ दादोस, द ब्रैम फिचर्स, the Robert Sobukwes of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people. Finer and truer than the purest diamond. तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि ये जो गलत चीजें साउथ अफ्रीका में हुई, मतलब जो भी ब्लैक लोगों के साथ जो गलत चीजें हुई, वो बस एक एंगल, एक उन्होंने नेगेटिव अभी इफेक्ट ही इसका बाकी के लोग देख रहे हैं. तो नेल्सन मंडेला इसकी पॉजिटिव साइड भी हमें कहते हैं, और वो कहते हैं कि क्योंकि साउथ अफ्रीकन ब्लैक्स जो थे उनके साथ इतनी घिलौनी हरकतें हुई थी, इसका रिजल्ट ये था कि ओलिवर थॉम्बस, वॉल्टर सिसिलूस, चीफ लुथली, यूसुफ दादो जैसे इतने बड़े फिलोसोफर्स, या आप कह सकते हो इतने बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स का जन्म हुआ, क्योंकि वो लोग, उन्होंने सब कुछ सहा, ये जो ब्रुटैलिटी है, इनह्यूमन ऑपरेशन है, या फिर आप कह सकते हो अनइंटेंडेड, इसका जो उनके दिमाग में जो इफेक्ट हुआ, इस सब का रिजल्ट ही ये था कि इन जैसे पॉलिटिकल थिंकर्स का जन्म हुआ. वो लोग साउथ अफ्रीका के ओरिजिनल ब्लैक इनहेबिटेंट्स ये सोचने के लिए मजबूर हो गए कि हमारे साथ इतनी गंदी चीजें क्यों हो रही है. एंड ओनली देन दे डिस्कवर्ड कि ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो बाकी की दुनिया में भी चलता है, जिस प्रकार से वाइट लोग अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, तो ये चीजें गलत है. तो ये उनको तब भी रियलाइज हुआ जब उनके साथ ये घिनौनी चीजें हरकतें हो गई, वो ऑपरेशन के शिकार हो गए, और इसी वजह से इस प्रकार के बड़े बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स का जन्म हुआ, जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज थी, यानी कि उनके पास हिम्मत हो, मतलब हिम्मत, उनके अंदर हिम्मत ने जन्म लिया, विजडम ने जन्म लिया, जेनरोसिटी, और ये सारे जो इतने वैल्यूज है सुंदर सुंदर, ये इसी इसी का नतीजा थे क्योंकि ब्लैक लोग ऑप्रेस हुए थे. सो परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, कि जितना ज्यादा ऑपरेशन ब्लैक लोगों के साथ हुआ, उतने ही ज्यादा उनके अंदर करेज रही, उतना ही ज्यादा विजडम उनके अंदर आ गया. तो साउथ नेल्सन मंडेला यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरी जो कंट्री है, मेरा जो देश है, मेरे देश में बहुत ज्यादा मिनरल्स हैं, जेम्स हैं, जेम्स यानी कि डायमंड्स या फिर गोल्ड आप कह सकते हो. तो वन थिंग विच वी नीड टू लर्न ओवर हियर इज दैट साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा गोल्ड माइंस हैं, और बहुत ही बड़े बड़े डायमंड के माइंस भी साउथ अफ्रीका में मौजूद है. तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि इसके ऊपर चढ़कर भी मेरी कंट्री उतनी ही ज्यादा वेल्दी है, मतलब कि रिच है मेरी कंट्री. क्यों? क्योंकि मेरे कंट्री में इतने विजडम से भरे हुए लोग मौजूद हैं. सो इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं क्योंकि उन लोगों, क्योंकि नेल्सन मंडेला का जो ताल्लुकात है ऐसे लोगों के साथ आया, जिसकी वजह से नेल्सन मंडेला ये थिंक करने के लिए मजबूर हो गए कि करेज का मतलब क्या है. उनके अंदर एक प्रकार की हिम्मत सी आ गई क्योंकि वो ऐसे लोगों के साथ मिलजुल कर रहने लगे, या फिर आप कह सकते हो उनका ज्यादा से ज्यादा जो वक्त था वो ऐसे लोगों के साथ बिताया जाता था. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. यानी कि यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने एक बहुत ही important line कही है बच्चों. वो कहते हैं कि करेज का मतलब ये नहीं, मतलब हिम्मत का मतलब ये नहीं होता कि आपके अंदर डर ही नहीं है, बट हिम्मत का मतलब ये होता है कि उस डर को आप किस प्रकार से ओवरपावर कर जाते हैं, उस डर को पीछे छोड़कर आप अपनी हिम्मत के सहारे आगे बढ़ते हैं. इसी का मतलब होता है कि आप करेजस हैं या फिर आप शूर हैं, आप ब्रेव हैं। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स द फियर। यानी कि ब्रेव इंसान वो होता है, ब्रेव पुरुष मतलब कि ये होता है जो जिसके अंदर डर भी होता है, बस उस डर और भय से वो आगे चलकर भी अपनी जो मंजिल उसके सामने है उसको पा लेता है, उसी इंसान को हम ब्रेव इंसान कह सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा डिफिकल्ट वर्ड है, रेजिलियंस, RESILIENCE। रेजिलियंस का मतलब है द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट। यानी कि आपके ऊपर कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, जब आप उसको ओवरपावर करके उस सिचुएशन से जब आप सक्सेसफुली बाहर निकलते हो उसको कहते हैं रेजिलियंस। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन्स हार्ट देन इट्स ऑपोजिट। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि कोई भी इंसान जब जन्म लेता है तब उसके अंदर हेट नहीं होती, बल्कि उसको हेट करना सिखाया जाता है उसके परिवार के द्वारा या फिर समाज के द्वारा। तो अगर हेट अगर हम में, नफरत अगर हम में सिखाई गई है तो इसका मतलब ये भी है कि प्यार भी हमें सिखाया जा सकता है। किसी इंसान के साथ अच्छे से व्यवहार करना या फिर काइंड बिहेव उसके साथ करना ये भी हमें सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार जो है या फिर किसी के ऊपर नफरत ना होना ये बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी टू लर्न है। देन आप कंपेयर करो हेट के साथ, अगर आप कंपेयर करो तो किसी के साथ अच्छा बर्ताव करना बहुत ही इजी है, ना कि उसके साथ बुरा बर्ताव करना। इवन इन द ग्रीनियस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स आई वुड सी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स Perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब वो प्रिजन में थे एज अ फ्रीडम स्ट्रगलर, फ्रीडम फाइटर, जब उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रिजन में रखा था क्योंकि वो एपर्थेट सिस्टम को बुरा बताते थे या फिर वो उसको डिफेंड नहीं करते थे, उसके अगेंस्ट खिलाफ उसके खड़े हो जाते थे, इसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको प्रिजन में रखा था या फिर जेल में रखा था। सो यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहते कि जो लोग उनके ऊपर या फिर उनके साथियों के ऊपर अट्रोसिटीज करते थे या फिर उनको मारा पीटा करते थे प्रिजन में, तो वो जो गार्ड्स थे, जो पुलिस ऑफिसर्स थे, एक सेकंड के लिए उनके आंखों में भी नेल्सन मंडेला को एक प्रकार की दया भाव जो है वो दिख गया था। तो वो कहते हैं नेल्सन मंडेला की वही उनके लिए काफी था ये बिलीव करने के लिए कि ह्यूमैनिटी अभी भी इस संसार में मौजूद है और इस प्रकार से किसी भी इंसान के अंदर आप नफरत नहीं भर सकते। कभी ना कभी तो उस इंसान के मन में जो इतनी ज्यादा नफरत भरी हुई है वो कभी ना कभी तो प्यार में तब्दील हो ही जाएगी। तो ये एक होप उनके मन में हमेशा होता था, जिसकी वजह से नेल्सन मंडेला को एक पावर मिल जाती थी, एक प्रकार से उनको शक्ति मिल जाती थी इस सारी चीजों को अपोज करने के लिए। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश। यानी कि इसका ये मतलब है कि इंसान के अंदर जो अच्छी चीजें होती हैं वो एक प्रकार के एक ज्योत की तरह होती है जो कभी भी बुझ नहीं सकती। हाँ, वो हिडन जरूर रहती है, मतलब उसको आप ढक के जरूर रख सकते हो, बट वो बुझ कभी नहीं जाती। कभी ना कभी तो उस इंसान के अंदर जो काइंड बिहेवियर है, जो अच्छा बर्ताव है, वो कभी ना कभी तो बाहर आएगा। और बच्चों, यही एक वजह थी जिसकी वजह से नेल्सन मंडेला ने जो अपनी उनका जब स्वेरिंग इन सेरेमनी थी एज ए प्रेसिडेंट, तब उन्होंने जानबूझ के कभी भी एक भी लफ्ज ऐसा नहीं कहा जो हेट को बढ़ावा दे रहा हो। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, His community, his country। तो वो कहते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में दो जिम्मेदारियां होती हैं, दो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। एक होती है उसके परिवार के तहत, उसके पेरेंट्स है या फिर उनकी पत्नी है या फिर उनके चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, उनके प्रति एक उनका ऑब्लिगेशन होता है एक जिम्मेदारी होती है कि उनके लिए वो अच्छा फूड या फिर उनके लिए आप कह सकते हो एक अच्छी लाइफस्टाइल उनके लिए प्रोवाइड करे, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस इंसान के कंधों पे उसके कम्युनिटी के लिए या फिर उसके कंट्री के लिए, उसके देश के लिए। तो ये सारी दोनों जिम्मेदारियां एक अलग, एक ही, मतलब आप कह सकते हो एक ही हिस्से के दो कॉइन्स होते हैं कि कोई भी इंसान अगर एक जिम्मेदारी संभाल रहा है तो एट द सेम टाइम उसको दूसरी जिम्मेदारी संभाल लेना या फिर उसके साथ डील करना उतना ईजी नहीं होता। क्योंकि अगर आप अपने परिवार के लिए इतने सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए अगर आप अपनी जिंदगी का वक्त दे रहे हो तो ये जरूर, मतलब ये इम्पॉसिबल सा होता है कि आप अपने कंट्री के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए भी उतना ही वक्त प्रोवाइड कर पाओ। सो ऑल इन ऑल एक डिफिकल्ट वॉक होता है एक इंसान के लिए ये दोनों जिम्मेदारियां निभाना। सो इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। तो नेल्सन मंडेला यहाँ पे कहते हैं कि हर इंसान को डिफिकल्ट भी अगर ये चीजें होती हैं फिर भी उसको ये दोनों चीजें बैलेंस करने के लिए आनी चाहिए, तभी वो अपनी जिंदगी खुश खुश तरीके से और फ्रीडम के साथ रह सकता है। बट ये तभी पॉसिबल होगा जब वो इंसान अपने उसके अंदर जो शक्तियां हैं उसका पूरा प्रयोग करेगा, तभी इन प्रकार की चीजें पॉसिबल है कि वो इंसान अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी वक्त निकालता है और अपने समाज के लिए भी। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ दोज ऑब्लिगेशंस। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि उन जैसे इंसान के लिए ये दोनों चीजें इक्वल तरीके से हैंडल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। क्यों? क्योंकि जिस समाज में उन्होंने जन्म लिया था या फिर जिस स्किन कलर में उन्होंने जन्म लिया था वही उनके लिए ये सारी चीजें बैलेंस करना डिफिकल्ट बना रही थी। क्योंकि नेल्सन मंडेला को यहाँ पे अपने फैमिली के लिए उनके पास बिल्कुल भी इतना वक्त नहीं था क्योंकि वो साउथ अफ्रीकन लोगों के बारे में सोच रहे थे। अगर वो अपनी फैमिली के बारे में सोचते तो वो इस एपार्थाइड के पूरे सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने में सक्षम नहीं बन पाते। क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं नेल्सन मंडेला ने अपनी जिंदगी के 30 साल यानी कि 30 साल जेल में गुजारे थे। तो किसी भी इंसान के लिए ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा कि वो अपने कंट्री के लिए लड़े झगड़े और उस एट द सेम टाइम अपने परिवार के लिए भी वक्त प्रोवाइड कर सके। सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर नेल्सन मंडेला बींग अ ब्लैक पर्सन कि वो इस पूरे सिचुएशन के खिलाफ आवाज भी उठाए और अपने अपने फैमिली के लिए वक्त भी दे। सो यही वो कह रहे हैं कि मेरे जैसा इंसान जिसने ब्लैक कम्युनिटी में जन्म लिया है उसके लिए ये डिफिकल्ट है। सो इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. So, yahan pe Nelson Mandela keh rahe hain ki jo bhi insaan, South African insaan, is jo pura apartheid system hai ya fir हम जिस प्रकार से हम जानते हैं कलर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जब जो भी इंसान आवाज उठाता था उस इंसान को उसके घर परिवार से दूर रखा जाता था, उसको जेल में रखा जाता था, उसको आइसोलेशन में रखा जाता था। तो एक प्रकार से उसको, मतलब एक ब्लैक पर्सन को जिंदगी इतनी ज्यादा बुरी थी कि जो भी उसके मतलब जो भी उसके प्रति जो बुरी चीजें हो रही है उसके प्रति वो आवाज भी नहीं उठा सकता था क्योंकि उसको फिर जेल में डाल दिया जाता था। और जब और वो ये सारी चीजें सहकर भी जिंदा नहीं रह पाता था क्योंकि इतनी ज्यादा ऑप्रेसिव या फिर इनह्यूमन ट्रीटमेंट उसको दी जाती थी, इतनी अब्यूजिव ट्रीटमेंट उन ब्लैक सिटीजन्स को दी जाती थी कि ना वो बोल पाना उनके लिए मुश्किल था और सह पाना तो और भी ज्यादा मुश्किल था। सो आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग chose to place my people above my family. But in attempting to serve my people, I found out that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, brother, a father and a husband. तो वो यहाँ पे कहते हैं कि मैंने शुरू में एक patriot होने का या फिर एक freedom fighter होने का जज्बा मेरे अंदर नहीं था, पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया उस तब तब मैं अपने परिवार को मेरे जो लोग थे उनके ऊपर मैं नहीं रख पाया। मैं अपनी जो सारी जिम्मेदारियां थी, एज अ एक बेटे की जिम्मेदारी या फिर एक हस्बैंड की जिम्मेदारी, एक अच्छे पिता होने की जिम्मेदारी, वो नहीं निभा पाए, क्योंकि जिस प्रकार से वक्त उनके साथ बीतता चला गया, उस प्रकार से धीरे धीरे वो ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों का भला करने में जुटे रहे, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा करने में जुटे रहे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाने में या फिर व्हाइट सुप्रीमेसी के खिलाफ आवाज उठाने में नेल्सन मंडेला डटे रहे। तो इसी सब का नतीजा था कि नेल्सन मंडेला एक पिता की जिम्मेदारी, एक बेटे की जिम्मेदारी और एक पति की जिम्मेदारी नहीं निभा सके। आई वॉज नॉट बॉर्न विद द हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम एंड रेन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड माई कस्टम ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जिस ट्राइब में उनका जन्म हुआ था, जिस जमात में उनका जन्म हुआ था, वो ट्राइब एक विलेज में रहा करती थी। तो ये नेल्सन मंडेला का शौक नहीं था कि वो फ्रीडम फाइटर बने या फिर जो बुरी घटनाएं हो रही हैं उसके खिलाफ आवाज, बट एक उनके अंदर एक भूख वो तब जन्मी जब वो ये सारी चीजें नहीं कर पाए, जब वो अपना जो फ्रीडम है वो अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाए, तभी एक उनको वक्त था जब उनको रियलाइज हुआ कि ये सारी चीजों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाना कितना ज्यादा जरूरी है। तो ऑल इन ऑल उनका ये मतलब था कि जब वो अपना फ्रीडम एंजॉय नहीं कर सकी, जब वो एक प्रकार से अपनी उनकी माँ की जो झोपड़ी थी वहां के फील्ड में वो अच्छे से दौड़ भाग नहीं कर पाए, जब तब तब उनको ऑपरेशन जब जब उनको ऑपरेशन का शिकार जब वो हो गए, तब तब उनको ये चीज याद दिलाने के लिए वो मजबूर हो जाते थे अपने आप को कि इन सारी चीजों के खिलाफ जो गलत चीजें हो रही है उनके खिलाफ मैंने आवाज उठाना कितना ज्यादा जरूरी है। So it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. तो जब वो छोटे थे तब उनको लगता था फ्रीडम का मतलब यही है कि उनका जो उनकी जो झोपड़ी है, उनका छोटा सा जो घर है, उसके आसपास घूमना या फिर फील्ड में और जो उनके खेत थे वहां पे दौड़ भाग करना ही फ्रीडम है, या फिर जो गांव में जो तालाब है उसमें स्विमिंग करना फ्रीडम है, या फिर आप आसमान के तारे देखते हुए जब आप ग्रास पे सो जाते हो उसको फ्रीडम कहते हैं। तो जब जैसे जैसे वो बड़े होते गए वैसे वैसे उन्होंने रियलाइज किया कि इन सारी चीजों को फ्रीडम नहीं कहते। जब आपके खिलाफ कोई इंसान आपकी गलती ना होते हुए भी जब आपको पनिशमेंट मिलती है और आप उसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकते, इस चीज को आप कह सकते हो कि आप फ्रीडम, आप फ्री नहीं हो। ये सारी चीजें आपको चीख चीख के कहती हैं कि आप फ्री नहीं हो। तो ये सारी चीजें नेल्सन मंडेला को रियलाइज हुई और उनके अंदर जो फ्रीडम के लिए भूख थी वो और ज्यादा बढ़ती गई जिस जैसे जैसे वक्त बीतता गया। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रेड what I pleased and go where I choose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family. The freedom not to be obstructed in a lawful life. तो जैसे जैसे वो बड़े होते गए वैसे वैसे उनको पता चला कि ये सारी चीजें ही फ्रीडम नहीं होती, बट फ्रीडम का मतलब ये भी होता है कि आप जितनी देर चाहो रात को बाहर रह सकते हो, आप जहां भी जाओ जा सकते हो, या फिर एक आप जब अपनी सिटी में हो तब आपको एक इज्जत समाज में मिलना, ये भी एक प्रकार का फ्रीडम ही है, या फिर आप अपनी मर्जी से किसी के साथ भी अपनी जिंदगी बिता सकते हो, मैरिंग समवन, या फिर अपनी फैमिली बना सकते हो, या फिर आपकी जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ है वो किसी भी गलत लॉ के अंदर नहीं आ रही है, इन्हीं सारी चीजों को फ्रीडम कहा जाता है। बट साउथ अफ्रीका में एक ब्लैक सिटीजन को वो साउथ अफ्रीका का सिटीजन होने के बावजूद भी ये सारी चीजें वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाता था। एक ब्लैक सिटीजन अपने जिसको उतना जिसको मतलब जितना चाहे उतना वो रात को बाहर नहीं रह सकता था, या फिर अपने मन से वो इंसान शादी भी नहीं कर पाता था, क्योंकि उसको हर वक्त एक वाइट जो ब्रिटिश ऑफिसर है उससे परमिशन लेना पड़ता था। तो ये सारी चीजें जब नेल्सन मंडेला को रियलाइज हुई, उन्हें पता चला ये चीजें गलत है और इसके खिलाफ आवाज उठाना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है, तो एक इल्यूजन सा था उसके उनके सामने। इल्यूजन का मतलब है समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इट इज नॉट। इल्यूजन का मतलब है कि कोई चीज हमें लगता है कि वो है बट वो रियल में नहीं होती। एंड ट्रांजिटरी का मतलब है नॉट परमानेंट, TRANSITORY, ट्रांजिटरी, इसका मतलब है नॉट परमानेंट, जो चीज टेम्पररी है वो चीज। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। तो शुरू में उनको लगता था कि बस वो फ्रीडम उनके लिए बस एक अपने लेवल पे ही उनके लिए जरूरी है। बट जैसे जैसे वक्त बीतता गया, जैसे जैसे वो साउथ अफ्रीका में पूरे घूमते चले गए, उनको ये दिखा कि उनके ट्राइब के बाकी लोग या फिर जो ब्लैक लोग थे साउथ अफ्रीका के सिटीजन्स, वो भी यही इन्हीं सारी चीजों का सामना कर रहे हैं और वो लोग खुश नहीं है। तब जाके उनके मन में कहीं तो रियलाइज हुआ कि ये मास ऑपरेशन हो रहा है। मास ऑपरेशन यानी कि एक बड़े स्तर पे, बड़े तौर पे सारे ब्लैक सिटीजन्स को ऑप्रेस किया जा रहा है जस्ट इन द नेम ऑफ रेशियल सुपीरियरिटी, जो कि बहुत ही गलत चीज है। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. तो जिस प्रकार से नेल्सन मंडेला दिखते थे, यानी कि उनकी स्किन ब्लैक थी या फिर उनके बाल घुंघराले थे, तो ऐसे दिखने वाले हर साउथ अफ्रीकन इंसान का फ्रीडम कर्टेल किया जाता था, उसको ऑपरेशन का वो शिकार हुआ जाता था। But the freedom of everyone who looked like I did, that is when I joined the African National Congress. And that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. तो तभी नेल्सन मंडेला African National Congress एक नाम की एक political party थी, उसमें join हो गए और उनको ये realize हुआ कि बस वो ही नहीं but बाकी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस operation का शिकार खुद को और अपने आने वाली पीढ़ियों को नहीं करना चाहते थे। तो उनको एक प्रकार का उनको मोटिवेशन मिला कि उनके मन में इस सारे गलत चीजों के खिलाफ लड़ने के लिए उनके अंदर एक पावर सी आई, एक शक्ति आई। सो इट वॉज द डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू बोल्ड वन दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी to become a criminal that turned a family loving husband into a man without a home, that forced like loving men to live like a monk, I am no more virtuous of myself sacrificing than the next man, but I found out that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला एक बहुत ही अपनी जिंदगी का मैं कहूंगी एक डिफिकल्ट फेज या फिर एक दर्द भरा फेज यहाँ पे वो बयां कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके मन में फ्रीडम का डिजायर या फिर आजादी की भूख उनके मन में तब आई जब उन्होंने देखा कि ये सारे ऑपरेशन कितने ज्यादा गलत है, और ये एक उनको एक भूख थी एक डिग्निटी भरी लाइफ जीने की, यानी कि एक सम्मान पूर्वक जिंदगी जीने की उनके मन में बहुत बड़ी भूख थी। सो ये जो पूरी आजादी के लिए जो जिम्मेदारियां थी या फिर आजादी के लिए जो झगड़ा था, वो उसका इफेक्ट क्या था, उसके क्या क्या कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन ये सारी चीजें नेल्सन मंडेला की लाइफ में लाई, या फिर एक वो एक बहुत ही बड़े एजुकेटेड इंसान थे, एक उन्होंने उनके पास बहुत सारी डिग्रियां थी, तो ये सारे डिग्रीज का कोई भी मतलब नहीं बना जब उनके मन में आजादी के लिए भूख पनपी। तो क्या क्या हुआ इसके बाद जब नेल्सन मंडेला के मन में ये सारी बातें, ये सारे रेवोल्यूशनरी विचार उनके मन में किस प्रकार से आए और क्या क्या चेंजेस उनके जिंदगी में हुए कि किस प्रकार से वो एक क्रिमिनल का जिंदगी मतलब क्रिमिनल की जिंदगी जीने के लिए उनको फोर्स किया गया, या फिर किस प्रकार से वो प्रिजन में रहे, किस प्रकार से उन्होंने अपनी जिंदगी के 30 साल जेल में बिताए, ये सारी चीजों के बारे में हम अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों। मैं एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ये पैराग्राफ है, विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास गाइस, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।